पद 40 का गुप्त इतिहास संख्या 14 दूसरा हाय भाग 1।
पिछले लेख में हमने पांचवी तुरही की भविष्यद्वाणीगत विशेषताओं जो पहली हाय है को शीघ्र आने वाले रविवार विधि के साथ समन्वित किया था। अंतिम तीन तुरहियों में पहली के रूप में पांचवी तुरही पर इस दृष्टिकोण से विचार करना कि पहली अंतिम को चित्रित करती है। पहली हाय में इस्लाम की भविष्यद्वाणीगत भूमिका को प्रकाशित वाक्य 11 के भूकंप के साथ समन्वित करता है। जिस दिन हमने सप्त की सभा में इस लेख पर चर्चा की, उसके अगले दिन मुझे एक मित्र का ईमेल प्राप्त हुआ और मेरा वो मित्र भी छठी तुरही, जो दूसरी हाय है, को शीघ्र आने वाले रविवार विधि के साथ समन्वित करने का प्रयास कर रहा था। ये एक वैध दृष्टिकोण है, क्योंकि अंतिम तीन तुरहियां तीन हाय है।
और मैंने देखा और स्वर्ग के मध्य में एक स्वर्ग दूत को उड़ते हुए सुना, जो बड़े शब्द से कह रहा था, हाय 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 पृथ्वी पर रहने वालों पर, उन तीन स्वर्ग दूतों की तुरहियों के अन्य शब्दों के कारण जिनका फूंका जाना अभी शेष है। प्रकाशित वाक्य 8:13।
जैसे पहली चार कलीसियाओं से अंतिम तीन कलीसियाएं भिन्न हैं और सात मुहरों के भीतर अंतिम तीन मुहरें विशिष्ट हैं, वैसे ही सात तुरहियों के भीतर अंतिम तीन तुरहियां एक पृथक प्रतीक है। इस भविष्यद्वाणी संबंधी सत्य पर वर्षों से बार बार विचार किया गया है। प्रथम और तृतीय हाय को एक अल्फा और एक ओमेगा के प्रतीक के रूप में देखने से उत्पन्न होने वाले प्रकाश पर विचार करने के साथ साथ हमें तीनों हायों को भविष्यद्वाणी के त्रिगुणित अनुप्रयोग के रूप में भी विचार करना चाहिए।
भविष्यवाणी के त्रिगुण अनुप्रयोग से ये पहचाना जाता है कि प्रथम और द्वितीय हाय की समस्त भविष्य सूचक विशेषताएं तृतीय हाय में विद्यमान होंगी। प्रथम हाय अरब का इस्लाम था और द्वितीय हाय तुर्की का इस्लाम था। प्रथम हाय का उद्देश्य पीड़ा देना था और द्वितीय हाय का उद्देश्य मनुष्यों के तिहाई भाग को मार डालना था।
पहली विपत्ति की यातना और उन्हें ये आज्ञा दी गई कि वे उन्हें मारे नहीं, परंतु 5 महीने तक उन्हें यातना दें, और उनकी यातना ऐसी थी जैसी किसी बिच्छू की यातना जब वो किसी मनुष्य को डंक मारता है, और उनकी पूछें बिच्छुओं के समान थीं और उनकी पूँछों में डंक थे, और उनकी सामर्थ्य ये थी कि वे मनुष्यों को 5 महीने तक हानि पहुँचाएं। प्रकाशित वाक्य 9:5-10।
दूसरे हाय का अंत।
और वे चारों स्वर्गदूत खोल दिए गए, जो एक घड़ी और एक दिन और एक महीने और एक वर्ष के लिए तैयार किए गए थे कि मनुष्यों के तिहाई भाग को मार डाले। इन तीनों के द्वारा मनुष्यों का तिहाई भाग मारा गया उस आग और उस धुएं और उस गंधक के द्वारा जो उनके मुँहों में से निकलते थे। प्रकाशित वाक्य 9:18।
जो मनुष्यों के वे दो तिहाई भाग मारे नहीं गए थे, उन्होंने मन फिराया नहीं,
और जो मनुष्य इन विपत्तियों से मारे नहीं गए थे, उन्होंने तब भी अपने हाथों के कामों से मन न फिराया, ताकि वे दुष्टात्माओं और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और लकड़ी की उन मूर्तियों की उपासना न करें जो न देख सकती हैं, न सुन सकती हैं और न चल सकती है, और न ही उन्होंने अपनी हत्याओं से, न अपने टोने टोटकों से, न अपने व्यभिचार से और न अपनी चोरियों से मन फिराया। प्रकाशित वाक्य 9:20-21। सात तुरहियां सात अंतिम विपत्तियों का प्रतीक हैं, और 20वें पद में तुरहियों को विपत्तियां कहा गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका अजगर, पशु और झूठे भविष्यद्वक्ता के त्रिविध संघ का एक तिहाई भाग है, और रविवार के विधान के समय वो छठे राज्य के रूप में मार डाला जाता है। उसकी मृत्यु झूठी उपासना के कारण हुई, जिसका प्रतीक उनके हाथों के काम, दुष्टात्माओं और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और लकड़ी की मूर्तों की पूजा तथा हत्या, टोना, व्यभिचार और चोरी है।
झूठी उपासना, जिसका प्रतीक रविवार की उपासना है, वही वो कारण है जिससे मन फिराया जाना चाहिए, परंतु उन्होंने मन फिराया नहीं, इसलिए परिणाम ये है कि इस्लाम के टिड्डों द्वारा पीड़ा और मृत्यु लाई जाती है। यद्यपि मनुष्यों का एक तिहाई भाग अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका रविवार के कानून के समय मार डाला जाता है, तो भी शेष दो तिहाई मन फिराते नहीं।
हाय और स्वर्गदूत।
पहला और दूसरा हाय मिलराइट इतिहास के पहले और दूसरे स्वर्गदूतों के अनुरूप हैं, और वो इतिहास 144,000 की इतिहास रेखा में अक्षरशः पुनरावृत होता है। 144,000 का इतिहास तीसरे स्वर्गदूत का इतिहास है और तीसरे हाय के अनुरूप है, जिस प्रकार मिलराइट इतिहास के मार्गचिन्ह 144,000 के इतिहास में पुनः प्रकट होते हैं,
उसी प्रकार पहले और दूसरे हाय के मार्ग चिन्ह भी तीसरे स्वर्गदूत के इतिहास में पुनरावृत होंगे।
पहला और दूसरा संदेश 1843 और 1844 में दिए गए थे और अब हम तीसरे के उद्घोष के अधीन हैं, परंतु ये तीनों संदेश अब भी घोषित किए जाने हैं। ये अब भी उतना ही अनिवार्य है जितना पहले कभी था कि उन्हें उन लोगों के लिए पुनः दोहराया जाए जो सत्य की खोज में हैं। लेखनी और वाणी के द्वारा हमें इस उद्घोष को सुनाना है, उनके क्रम को और उन भविष्यवाणियों के अनुप्रयोग को प्रदर्शित करते हुए जो हमें तीसरे स्वर्गदूत के संदेश तक ले आती हैं। पहले और दूसरे के बिना तीसरा हो ही नहीं सकता। इन संदेशों को हमें प्रकाशनों में, प्रवचनों में, संसार को देना है, भविष्यवाणी के इतिहास की रेखा में उन बातों को दिखाते हुए जो हो चुकी हैं और जो होंगी। सिलेक्टेड मैसेजेस बुक 2 104।
भविष्यद्वाणी के विद्यार्थी होने के नाते हमारा कार्य ये है कि हम प्रथम और द्वितीय स्वर्गदूतों के संदेशों को तृतीय स्वर्गदूत के संदेश में संयोजित करें। प्रथम दो संदेशों के बिना तृतीय संदेश हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रथम और द्वितीय के बिना तृतीय नहीं हो सकता। ये क्रम की दृष्टि से सत्य है, क्योंकि यदि प्रथम और द्वितीय नहीं हैं तो तृतीय वास्तव में प्रथम ही है। ये विषय वस्तु की दृष्टि से भी सत्य है, क्योंकि प्रथम और द्वितीय की भविष्यद्वाणी या विशेषताएं तृतीय की विशेषताओं की पहचान कराती हैं। गणितीय दृष्टि से प्रथम और द्वितीय के बिना तृतीय नहीं होता, और भविष्यद्वाणीय दृष्टि से भी तृतीय स्वर्गदूत में कोई मार्ग चिन्ह नहीं होते यदि प्रथम और द्वितीय के मार्ग चिन्हों को छोड़ दिया जाए।
परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य 14 के संदेशों को भविष्यद्वाणी की श्रेणी में उनका स्थान दिया है, और उनका कार्य इस पृथ्वी के इतिहास के अंत तक बंद होने वाला नहीं है। पहले और दूसरे स्वर्गदूत के संदेश अब भी इस समय के लिए सत्य हैं, और इन्हें इसके पश्चात आने वाले इस संदेश के साथ समानांतर चलना है। तीसरा स्वर्गदूत अपनी चेतावनी बड़े शब्द के साथ सुनाता है। इन बातों के बाद यूहन्ना ने कहा, मैंने एक और स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके पास बड़ा अधिकार था, और पृथ्वी उसकी महिमा से प्रकाशित हो गई। इस प्रकाशन में तीनों संदेशों का समस्त प्रकाश संयुक्त है। The 1888 Materials 800 800।
हमारा कार्य ये दिखाना है कि भविष्यवाणी के इतिहास की क्रम रेखा में जो बातें हो चुकी हैं मिलरियों के आंदोलन में, और जो बातें होने वाली हैं 144,000 के आंदोलन में।
प्रभु संसार को उसके अधर्म के कारण दंड देने ही वाला है। वो धार्मिक समुदायों को उस ज्योति और सत्य के अस्वीकार के कारण दंड देने ही वाला है जो उन्हें दिया गया है। वो महान संदेश जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्वर्गदूतों के संदेशों को संयुक्त करता है, संसार को दिया जाना है। यही हमारे कार्य का मुख्य भार होना चाहिए। द सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट बाइबल कॉमेंट्री वॉल्यूम 7 950।
पहले और दूसरे स्वर्गदूत के संदेश का संयोजन ही वो है जो प्रकाशित वाक्य 18 के स्वर्गदूत के उतरने पर पृथ्वी को आलोकित करता है। उसने कहा, इन बातों के बाद यूहन्ना ने कहा, मैंने एक और स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके पास बड़ा अधिकार था, और पृथ्वी उसकी महिमा से प्रकाशमान हो गई। इस प्रकाशन में तीनों संदेशों का समस्त प्रकाश संयुक्त है। पृथ्वी के प्रकाशमान होने से संबंधित प्रकाशन तब संपन्न होता है जब तीनों संदेशों का समस्त प्रकाश संयुक्त किया जाता है। पंक्ति पर पंक्ति तीनों संदेशों को इस प्रकार संयुक्त करने का कार्य कि मिलेराइट इतिहास को 144,000 के इतिहास के साथ दो समानांतरों में लाया जाए, तीन विपत्तियों के साथ भी संपन्न किया जाना है।
दूसरे स्वर्गदूत द्वारा घोषित बाबुल का पतन पहले स्वर्गदूत के संदेश से पृथक नहीं किया जा सकता। पहले स्वर्गदूत के संदेश ने 1843 में मसीह के द्वितीय आगमन की पहचान की थी, और जब वो संदेश असफल हुआ तब उस संदेश के प्रभाव ने प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं के पतन को उत्पन्न किया। वो प्रभाव दूसरा स्वर्गदूत था, कारण पहले स्वर्गदूत की असफलता थी। यदि पहला स्वर्गदूत न होता तो दूसरे स्वर्गदूत द्वारा घोषित बाबुल का पतन भी न होता। जिस तत्व ने कारण और प्रभाव को एक साथ बांधे रखा वो समय था। समय 1843 साकार नहीं हुआ, और उसी असफलता ने प्रभाव उत्पन्न किया। कारण ये त्रुटि थी कि मिलर ने उन तीन भविष्यद्वाणियों की समाप्ति लगभग 1843 में होने का गलत निष्कर्ष निकाला था। 2337 2300 वर्षों की
वे तीन भविष्यद्वाणियां जिनके विषय में मिलर का विश्वास था कि उनका समापन 1843 में मसीह के बादलों में आने के साथ होगा, जब वे समय संबंधी भविष्यद्वाणियां जिन्हें मिलर ने गलत रूप से समझा था असफल ठहरी, तब उसने प्रोटेस्टेंटों को पहले स्वर्गदूत के संदेश को अस्वीकार करने का कारण प्रदान किया और दूसरा स्वर्गदूत आ पहुंचा। पहला स्वर्गदूत कारण था और दूसरा प्रभाव।
पहले और दूसरे स्वर्गदूतों के संदेशों को अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे भविष्यवाणीगत समय के द्वारा भविष्यद्वक्ता पूर्ण रीति से परस्पर जुड़े हुए हैं। पहली और दूसरी विपत्तियां भी समय के द्वारा भविष्यद्वक्ता पूर्ण रीति से जुड़ी हुई है। पहली विपत्ति की समय भविष्यवाणी, जो पीड़ा पहुंचाने वाले 150 वर्षों की पहचान कराती है, ठीक वहीं समाप्त होती है जहां दूसरी विपत्ति की वो समय भविष्यवाणी, जो वध करने वाले 391 वर्ष और 15 दिनों को प्रकट करती है, आरंभ होती है। समय भविष्यवाणी पहली और दूसरी विपत्ति को और साथ ही पहले और दूसरे स्वर्गदूतों के संदेशों को भी परस्पर जोड़ती है।
पहले और दूसरे धिक्कारों की समय संबंधी भविष्यवाणियों की पूर्ति ने पहले स्वर्गदूत के संदेश को सामर्थ्य प्रदान की और प्रकाशित वाक्य 10 के स्वर्गदूत को उसके प्रताप से संसार को आलोकित करने के लिए नीचे ले आई। पहले स्वर्गदूत के विषय में बोलते हुए सिस्टर व्हाइट ने अभिलेखित किया कि उन्हें बताया गया कि उसका मिशन अपनी महिमा से पृथ्वी को आलोकित करना और मनुष्य को परमेश्वर के आने वाले क्रोध के विषय में चेतावनी देना था। यही प्रकाशित वाक्य 18 के तीसरे स्वर्गदूत का भी वही अभिन्न मिशन है।
जो स्वर्गदूत तीसरे स्वर्गदूत के संदेश की घोषणा में सहभागी होता है, वो अपनी महिमा से सारी पृथ्वी को प्रकाशित करने वाला है। यहाँ एक ऐसे कार्य की भविष्यवाणी की गई है जिसका विस्तार समस्त विश्व में होगा और जिसकी सामर्थ्य असाधारण होगी। 1840-44 का आगमन आंदोलन परमेश्वर की सामर्थ्य का एक महिमामय प्रकटीकरण था। पहले स्वर्गदूत का संदेश संसार के प्रत्येक मिशन स्थल तक पहुंचाया गया था और कुछ देशों में ऐसा महान धार्मिक जागरण देखा गया था जैसा 16वीं शताब्दी के धर्म सुधार के बाद से किसी भी देश में नहीं देखा गया। परंतु इन सबको तीसरे स्वर्गदूत की अंतिम चेतावनी के अंतर्गत होने वाले उस सामर्थ्यशाली आंदोलन द्वारा अतिक्रमित किया जाना है। ये कार्य पिंतेकुस्त के दिन के समान होगा, जैसे सुसमाचार के आरंभ में पवित्र आत्मा के उंडे ले जाने के समय पहली वर्षा इसलिए दी गई थी कि बहुमूल्य बीज अंकुरित हो, वैसे ही उसके समापन पर पिछली वर्षा फसल के पकने के लिए दी जाएगी। तब हम जानेंगे, यदि हम यहोवा को जानने में लगे रहें, उसका प्रकट होना भोर के समान निश्चित है और वो हमारे पास वर्षा के समान आएगा, पृथ्वी पर पड़ने वाली पिछली और पहली वर्षा के समान। होशे 6:3। हे सियोन की संतानों, मगन हो और अपने परमेश्वर यहोवा में आनंद करो, क्योंकि उसने तुम्हें पहली वर्षा यथोचित मात्रा में दी है और वो तुम्हारे लिए वर्षा बरसाएगा, अर्थात पहली वर्षा और पिछली वर्षा। योएल 2:23। अंत के दिनों में परमेश्वर कहता है कि मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा और ऐसा होगा कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। प्रेरितों के काम 2:17-21।
सुसमाचार का महान कार्य परमेश्वर की सामर्थ्य के उससे कम प्रकट होने के साथ समाप्त नहीं होना है जितना उसके प्रारंभ में प्रकट हुआ था। जिन भविष्यद्वाणियों की पूर्ति सुसमाचार के आरंभ में पूर्व वृष्टि के उंडेले जाने में हुई थी, उनकी पूर्ति उसके समापन पर पिछली वर्षा में फिर से होनी है। यहाँ वे शीतलता के दिन हैं जिनकी ओर प्रेरित पत्रस ने दृष्टि लगाई थी जब उसने कहा, इसलिए मन फिराओ और फिरो कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जब प्रभु के सम्मुख से शीतलता के दिन आएं और वो यीशु को भेजे। प्रेरितों के काम 3:19-20। द ग्रेट कॉन्ट्रोवर्सी 6:1-1।
पहले और दूसरे हाय की समय संबंधी भविष्यद्वाणियों की पूर्ति ने 1840 में उस स्वर्गदूत को पृथ्वी को अपनी महिमा से प्रकाशित करने के लिए उतारा और इस प्रकार पहले स्वर्गदूत के संदेश को सामर्थ्य प्रदान की, तथा तीसरे हाय की पूर्ति ने 9:11 को उस स्वर्गदूत को पृथ्वी को अपनी महिमा से प्रकाशित करने के लिए उतारा और इस प्रकार तीसरे स्वर्गदूत के संदेश को सामर्थ्य प्रदान की। पृथ्वी का प्रकाशित किया जाना समानांतर अनुप्रयोग में पंक्ति पर पंक्ति इन दोनों आंदोलनों के संयुक्त होने के द्वारा संपन्न होता है। तीन हायों का संदेश ही तीन स्वर्गदूतों के संदेश को सामर्थ्य प्रदान करता है। वे दो रेखाओं के रूप में परस्पर बुने हुए हैं, एक आंतरिक और दूसरी बाह्य।
तीन स्वर्गदूत परमेश्वर की प्रजा के कार्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनका कार्य तीन हायों की पूर्ति के द्वारा सामर्थ्य प्राप्त करता है। बाह्य इस्लाम और उसका भविष्यद्वाणी संबंधी कार्य है और आंतरिक उसके लोगों में मसीह है, महिमा की आशा। इसी कारण अंतिम दिनों में उसके 12 पुत्रों के प्रतीकवाद के संबंध में याकूब की भविष्यद्वाणी में यहूदा को गधे से बांधा गया है।
और याकूब ने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा, इकट्ठे हो जाओ ताकि मैं तुम्हें बताऊं कि अंतिम दिनों में तुम पर क्या बीतेगी। इकट्ठे हो जाओ और सुनो, हे याकूब के पुत्रों, और अपने पिता इज़राइल की ओर कान लगाओ। हे यहूदा, तू वही है जिसकी तेरे भाई प्रशंसा करेंगे। तेरा हाथ तेरे शत्रुओं की गर्दन पर होगा, तेरे पिता की संतान तेरे सामने दंडवत करेगी। यहूदा सिंह का बच्चा है, हे मेरे पुत्र, तू शिकार से ऊपर चढ़ आया है। वो झुक गया, वो सिंह के समान वरन वृद्ध सिंह के समान बैठ गया, कौन उसे उकसाकर उठाएगा। राजदंड यहूदा से न हटेगा और न उसके पैरों के बीच से व्यवस्था देने वाला, जब तक शीलोह न आए और जातियों का एकत्र होना उसी के अधीन होगा। वो अपने बछेड़े को दाखलता से और अपनी गदही के बच्चे को उत्तम दाखलता से बांधता है। उसने अपने वस्त्र दाखरस में और अपने कपड़े अंगूरों के लोहू में धोए हैं। उसकी आँखें दाखरस से लाल होंगी और उसके दांत दूध से श्वेत। उत्पत्ति 39:1-2:8-12।
मसीह यहूदा के गोत्र का सिंह है, जिसने अपने वस्त्रों को लोहू में धोया और जो श्रेष्ठ दाखलता है, जो भविष्यवाणी के अनुसार गधी के बछड़े से बंधी हुई है। तीन हायों का बाह्य संदेश तीन स्वर्गदूतों के आंतरिक संदेश से बंधा हुआ है। पहला और दूसरा स्वर्गदूत तीसरे स्वर्गदूत के समानांतर चलते हैं और पहली तथा दूसरी हाय को तीसरी हाय के समानांतर चलना ही चाहिए।
कुंजी: नीनवेह की लड़ाई वो कुंजी है जो संसार पर इस्लाम के अंधकार को ले आती है, जब रोमन कैथोलिक धर्म का घातक घाव शीघ्र आने वाले रविवार के विधान पर चंगा किया जाता है, जो प्रकाशित वाक्य 11 का वो भूकंप है जहां तीसरी हाय अचानक आती है। वो भूकंप के घंटे में आती है।
और उसी घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ और नगर का 10वां भाग गिर पड़ा और उस भूकंप में 7,000 मनुष्य मारे गए और शेष लोग भयभीत हो गए और उन्होंने स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। दूसरा हाय टल गया और देखो, तीसरा हाय शीघ्र आने वाला है। प्रकाशित वाक्य 11:13-14।
रविवार का विधान संसार के लिए पशु की मूर्ति की परीक्षा के समय का आरंभ करता है और नीनवे की लड़ाई वो कुंजी है जो छठे राज्य के विजय प्राप्त होने की पहचान कराती है, जब सूर की वेश्या यशाया 23 की पूर्ति में अपने गीत गाना आरंभ करती है और स्मरण की जाती है। पशु की मूर्ति की परीक्षा वो परीक्षा है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की अनंत नियति का निर्णय किया जाता है और उसका निर्णय अनुग्रह अवधि के बंद होने से पहले कर दिया जाता है। संसार के लिए अनुग्रह अवधि तब बंद होती है जब मीखाएल खड़ा होता है। प्रकाशित वाक्य 13:12 और आगे के अनुसार संसार के लिए पशु की मूर्ति की परीक्षा का समय संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए पशु की मूर्ति की परीक्षा के समय में प्रतीकात्मक रूप से पूर्वदर्शित किया गया है।
जब अमेरिका, जो धार्मिक स्वतंत्रता की भूमि है, विवेक को बाध्य करने और मनुष्यों को झूठे सप्त का सम्मान करने के लिए विवश करने में पोप सत्ता के साथ एक हो जाएगा, तब पृथ्वी के प्रत्येक देश के लोग उसके उदाहरण का अनुसरण करने के लिए प्रेरित किए जाएंगे। टेस्टिमोनीज वॉल्यूम 6:18।
संयुक्त राज्य में पशु की मूरत की परीक्षा घड़ी प्रकाशित वाक्य 7:144,000 को अलग करती है और उन पर मुहर लगाती है, और संसार के लिए पशु की मूरत की परीक्षा घड़ी प्रकाशित वाक्य 7 की बड़ी भीड़ पर मुहर लगाती है।
विदेशी राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका के उदाहरण का अनुसरण करेंगे, यद्यपि वो अग्रणी है तो भी वही संकट हमारे लोगों पर संसार के सब भागों में आएगा। टेस्टिमोनीज खंड 6:395।
नीनेवे की लड़ाई द्वारा निरूपित कुंजी संसार के लिए प्रतिमा की परीक्षा के समय के आरंभ को चिह्नित करती है, जबकि वही संयुक्त राज्य के लिए प्रतिमा की परीक्षा के समय के अंत को भी चिह्नित करती है। नीनेवे की लड़ाई द्वारा निरूपित एक कुंजी अथाह गढ़े को खोलती है जो संसार में इस्लाम की बाढ़ को लेकर आती है, जिसे टिड्डियों के रूप में निरूपित किया गया है। आधी रात की पुकार के अंत में वो कुंजी उस कुंजी द्वारा पूर्वरूपित है
जो आधी रात की पुकार के आरंभ में संयुक्त राज्य में उसी अथाह गढ़े को खोलती है।
संयुक्त राज्य में कुंजी का प्रतिनिधित्व लैव्य व्यवस्था 23 में नरसिंगों के पर्व के रूप में किया गया है, जब आधी रात की पुकार की घोषणा के आरंभ में गधे को खोला जाता है। वो कुंजी तब घुमाई जाती है जब नैशविल पर अग्निगोलों का प्रहार होता है। नरसिंगों का पर्व और नैशविल पर आक्रमण जब इस्लाम को छोड़ा जाता है, रविवार के कानून के समय नीनवे की लड़ाई का प्रतिरूप है।
रविवार का विधान अर्धरात्रि की पुकार की घोषणा का अंत है, क्योंकि तब वो पुकार ऊंचे स्वर की पुकार में परिवर्तित हो जाती है और भविष्यवाणी की अनिवार्यता के अनुसार उस अवधि का आरंभ उसके अंत को चित्रित करना चाहिए। पहली विपत्ति में इस्लाम को रोम की सेनाओं को पीड़ित करना था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रतीकात्मक निरूपण करती है। 150 वर्षों तक कुंजी निनेवे का युद्ध अर्धरात्रि की पुकार की घोषणा के आरंभ को चिन्हित करती है, जैसा कि तुरहियों का पर्व भी करता है। लैव्य व्यवस्था 23 में तुरहियों के पर्व और पिंटेकुस्त के बीच जो कुटीरवास का पर्व भी है 15 दिन है। संयुक्त राज्य अमेरिका में पशु की मूरत की परीक्षा के समय के दौरान वे 15 दिन पहली विपत्ति में 150 वर्षों की पीड़ा के अनुरूप है। 15 150 का दशमांश है।
वे 15 दिन 150 वर्ष तब समाप्त होते हैं जब 391 वर्ष और 15 दिन आरंभ होते हैं, क्योंकि 22 अक्टूबर 1844 से भविष्यवाणी का समय अब लागू नहीं होता। इसलिए यातना के वे 150 वर्ष लैव्य व्यवस्था 23 के उन 15 दिनों का एक प्रतीक है, जो तुरहियों के पर्व से आरंभ होते हैं, जिसके 5 दिन बाद पताका का आरोहण होता है, उसके 5 दिन बाद प्रायश्चित के दिन का न्याय होता है और उसके 5 दिन बाद पिंतेकुस्तीय उंडेला जाना होता है।
वहां मनुष्यों के तिहाई भाग को मार डालने के लिए नियत वो घड़ी और एक दिन और एक महीना और एक वर्ष आरंभ होता है।
घड़ी उस बड़े भूकंप की घड़ी है जो रविवार का विधान है। दिन यहोवा के प्रतिफल का वो दिन है जब लाओदीकिया की 7वें दिन की एडवेंटिस्ट कलीसिया प्रभु के मुख से उगल दी जाती है,
क्योंकि वे ऐसी जाति है जिनमें सम्मति नहीं और न ही उनमें कोई समझ है। काश वे बुद्धिमान होते, काश वे इसे समझते, काश वे अपने अंतिम परिणाम पर विचार करते। एक व्यक्ति कैसे 1000 को खदेड़ सकता है और 2 कैसे 10,000 को भगा सकते हैं, यदि उनकी चट्टान ने उन्हें बेच न दिया होता और यहोवा ने उन्हें सौंप न दिया होता, क्योंकि उनकी चट्टान हमारी चट्टान के समान नहीं है। हमारे शत्रु स्वयं ही इसके न्यायी हैं, क्योंकि उनकी दाखलता सदोम की दाखलता में से है और अमोरा के खेतों में से है। उनके अंगूर पित्त के अंगूर हैं, उनके गुच्छे कड़वे हैं, उनका दाख मधु अजगरों का विष है और नागों का घातक विष। क्या ये मेरे पास भंडार में रखा नहीं है और मेरे खजानों के बीच मुहरबंद नहीं है? पलटा लेना और प्रतिफल देना मेरा काम है। नियत समय पर उनका पांव फिसलेगा, क्योंकि उनकी विपत्ति का दिन निकट है और जो बातें उन पर आने वाली हैं वे शीघ्र चली आती हैं, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा का न्याय करेगा और अपने दासों के विषय में तरस खाएगा, जब वो देखेगा कि उनकी शक्ति जाती रही और न कोई बंधा रह गया है न कोई बचा है। तब वो कहेगा, उनके देवता कहाँ हैं, वो चट्टान जिस पर उन्होंने भरोसा रखा था? व्यवस्था विवरण 32 तंतावनुच पर बीन।
भूकंप का घंटा उनकी विपत्ति का दिन है। ये एडवेंटवाद के उन लोगों पर आने वाला न्याय है जिन्हें उन ज्ञान विषयों की समझ नहीं है जो अंतिम दिनों में बढ़ाए जाते हैं। उन्होंने अपने घर की नींव रखने के लिए एक जाली चट्टान को चुना है और वास्तव में उनकी चट्टान रेत थी।
चेतावनी आ चुकी है, किसी भी ऐसी वस्तु को भीतर आने देने की अनुमति नहीं दी जानी है जो उस विश्वास की नींव को विचलित करे जिस पर हम उस समय से निर्माण करते आए हैं जब 1842, 1843 और 1894 में वो संदेश आया था। मैं इस संदेश में थी और तब से मैं संसार के सामने उस ज्योति के प्रति सच्ची ठहरी हूँ जो परमेश्वर ने हमें दी है। हम उस मंच से अपने पांव हटाने का विचार नहीं रखते जिस पर वे उस समय रखे गए थे जब दिन प्रतिदिन हम गंभीर प्रार्थना के साथ प्रभु की खोज करते हुए ज्योति की तलाश कर रहे थे। क्या तुम समझते हो कि मैं उस ज्योति को छोड़ सकती हूँ जो परमेश्वर ने मुझे दी है? वो युगों की चट्टान के समान है। जब से वो मुझे दी गई है तब से वही मेरा मार्गदर्शन करती रही है। रिव्यू एंड हेरल्ड, अप्रैल 14, 1903।
महीना पहले महीने का प्रतिनिधित्व करता है।
हे सियोन की संतान, तब आनंदित हो और अपने परमेश्वर यहोवा में मगन हो, क्योंकि उसने तुम्हें उचित मात्रा में पहली वर्षा दी है और वो तुम्हारे लिए वर्षा बरसाएगा, पहली वर्षा और पिछली वर्षा, पहले महीने में, और खलिहान गेहूं से परिपूर्ण होंगे और हौद दाख मधु और तेल से उमड़ पड़ेंगे, और मैं तुम्हें उन वर्षों की भरपाई कर दूंगा जिन्हें टिड्डियों ने खा लिया, कंकर कीड़े, सूंडी और भक्षक कीड़े ने, मेरी वो बड़ी सेना जिसे मैंने तुम्हारे बीच भेजा था, और तुम बहुतायत से खाओगे और तृप्त होगे, और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे जिसने तुम्हारे साथ अद्भुत व्यवहार किया है, और मेरी प्रजा फिर कभी लज्जित न होगी, और तुम जानोगे कि मैं इसराइल के बीच में हूँ और मैं ही तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ और कोई दूसरा नहीं, और मेरी प्रजा फिर कभी लज्जित न होगी। योएल 2:9-10।
रविवार के कानून की घड़ी में तीसरे हाय का इस्लाम अप्रत्याशित रूप से प्रहार करता है और लोदीकियाई एडवेंटवाद लज्जित होता है, क्योंकि उन्होंने सर्प की चट्टान पर भरोसा रखा है। उस समय प्रथम मास में शुद्ध किए गए एक लोगों पर पिछली वर्षा उंडेली जाती है। उसी बिंदु पर नैशविल से आगे की पीड़ा के पश्चात संयुक्त राज्य अमेरिका मार डाला जाता है। वो पीड़ा जो नगरों के विनाश है आरंभ होती है, और रविवार के कानून की घड़ी में संयुक्त राज्य अमेरिका बाइबिलीय भविष्यवाणी के छठे राज्य के रूप में समाप्त हो जाता है, मार डाला जाता है, और इस प्रकार संसार के लिए पशु की मूरत की परीक्षा के समय का प्रवेश कराता है, जो तब समाप्त होता है जब आठवां राज्य अपने अंत को पहुंचता है और उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं होता, मार डाला जाता है।
फरात।
फरात नदी प्रतीकात्मक रूप से इस्लाम से संबद्ध है, और यूफ्रेट्स का अर्थ है फलवंत अथवा फूट निकलना। दूसरी विपत्ति में वे चार पवन जो फरात पर बंधे हुए हैं छोड़ दिए जाते हैं।
और छठे स्वर्ग दूत ने तुरही फूंकी, तब मैंने उस सुनहरी वेदी के चारों सींगों में से जो परमेश्वर के सामने हैं एक वाणी सुनी, जो उस छठे स्वर्ग दूत से जिसके पास तुरही थी ये कह रही थी, बड़े महान नद फरात पर बंधे हुए उन चार स्वर्ग दूतों को खोल दे। तब वे चारों स्वर्ग दूत खोल दिए गए, जो एक घड़ी और एक दिन और एक महीने और एक वर्ष के लिए तैयार किए गए थे, ताकि मनुष्यों के तिहाई भाग को घात करें। प्रकाशित वाक्य 9:13-15।
यूफ्रेटिस प्रतिज्ञात देश की पूर्वी सीमा का प्रतीक था, और भविष्यवाणी में इस्लाम पूर्व के पुत्र है। उनकी भविष्य सूचक विशेषता ये है कि वे रोके जाते हैं और फिर छोड़ दिए जाते हैं, जिसकी शुरुआत हाजिरा के सारा द्वारा रोके जाने से होती है।
और परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा तेरे लिए एक पुत्र जनेगी, और तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उसके साथ अपनी वाचा को सदा की वाचा ठहराऊंगा, और उसके पश्चात उसके वंश के साथ भी, और इश्माएल के विषय में मैंने तेरी सुन ली है, देख मैंने उसे आशीष दी है और उसे फलवंत करूंगा और उसे अत्यंत बढ़ाऊंगा, वो 12 प्रधान उत्पन्न करेगा और मैं उसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। उत्पत्ति 17:19-20।
इश्माएल को फलवंत किया गया था, और फरात का अर्थ है फलवंत। पहले हाय के कष्ट की 150 वर्षों की भविष्यवाणी के समापन पर एक घड़ी, एक दिन, एक मास और एक वर्ष की भविष्यवाणी आरंभ हुई, जब इस्लाम मनुष्यों के तिहाई भाग का वध करने के लिए छोड़ दिया गया। संडे लॉ के समय बाइबल की भविष्यवाणी का छठा राज्य मार डाला जाता है, और वो आधुनिक रोम का तिहाई भाग है। 11 अगस्त 1840 को पहले स्वर्गदूत के संदेश के सामर्थ्य प्राप्त होने के समय इस्लाम को रोका गया था, और 9:11 को तीसरे स्वर्गदूत के संदेश के सामर्थ्य प्राप्त होने के समय उसे छोड़ दिया गया।
9:11 को 144,000 पर मुहर लगाए जाने का कार्य आरंभ हुआ, जब मृतकों का न्याय समाप्त हुआ और जीवितों का न्याय आरंभ हुआ। जब तीसरे हाय का इस्लाम 9:11 को छोड़ा गया, तब उसे मुहर लगाए जाने के समय के दौरान तुरंत रोक दिया गया।
यह दर्शन 1847 में दिया गया था, जब सप्त का पालन करने वाले एडवेंट भाई बहुत ही थोड़े थे, और उनमें से भी बहुत कम ये समझते थे कि उसका पालन इतना महत्वपूर्ण है कि वो परमेश्वर की प्रजा और अविश्वासियों के बीच एक विभाजन रेखा खींच दे। अब उस दर्शन की पूर्ति दिखाई देने लगी है। यहाँ उल्लिखित उस क्लेश काल का आरंभ उस समय की ओर संकेत नहीं करता जब विपत्तियां उंडेली जाने लगेंगी, बल्कि उससे ठीक पहले की एक छोटी अवधि की ओर, जब मसीह पवित्र स्थान में है। उस समय जब उद्धार का कार्य समाप्ति पर होगा, तब पृथ्वी पर क्लेश आ रहा होगा और जातियां क्रोधित होंगी, तो भी उन्हें इस प्रकार रोके रखा जाएगा कि वे तीसरे स्वर्गदूत के कार्य को रोक न सकें। उसी समय पिछली वर्षा अर्थात प्रभु की उपस्थिति से आने वाली तरोताजगी आएगी, ताकि तीसरे स्वर्गदूत की बुलंद आवाज़ को सामर्थ्य मिले और पवित्र जन उस समय में स्थिर रहने के लिए तैयार किए जाएं जब सात अंतिम विपत्तियां उंडेली जाएंगी। अर्ली राइटिंग्स एडन 5।
अनुग्रह अवधि के समापन तक ले जाने वाला संक्षिप्त समय वही अवधि है जब मसीह पवित्र स्थान में है और उद्धार के कार्य को समाप्त कर रहे हैं।
प्रतीकात्मक व्यवस्था में जो मसीह के बलिदान और याजकत्व की छाया थी, पवित्र स्थान का शुद्धिकरण वार्षिक सेवा कार्य के क्रम में महायाजक द्वारा संपन्न की जाने वाली अंतिम सेवा थी। ये प्रायश्चित का समापन कार्य था, इसराइल में से पाप को दूर करना या हटा देना। ये स्वर्ग में हमारे महायाजक की सेवकाई के समापन कार्य का पूर्वाभास था, जिसमें उसके लोगों के पापों को, जो स्वर्गीय अभिलेखों में दर्ज हैं, दूर किया जाता है या मिटा दिया जाता है। इस सेवा में जांच का एक कार्य, न्याय का एक कार्य सम्मिलित है, और ये स्वर्ग के बादलों पर सामर्थ्य और बड़े तेज के साथ मसीह के आगमन से ठीक पहले होता है, क्योंकि जब वो आता है तब प्रत्येक मामले का निर्णय हो चुका होता है। यीशु कहता है, मेरा प्रतिफल मेरे साथ है कि हर एक को उसके काम के अनुसार दूं। प्रकाशित वाक्य 22:12। न्याय का यही कार्य जो दूसरे आगमन से ठीक पूर्व होता है, प्रकाशित वाक्य 14:7 में प्रथम स्वर्गदूत के संदेश में घोषित किया गया है। परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। द ग्रेट कॉन्ट्रोवर्सी 352।
उसकी प्रजा के पापों का मिटाया जाना जीवितों के न्याय के दौरान होता है।
इसलिए मन फिराओ और परिवर्तित हो जाओ, ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जब प्रभु की उपस्थिति से शांति के समय आए, और वो यीशु मसीह को भेजेगा, जिसका प्रचार पहले तुम्हारे लिए किया गया था, जिसे स्वर्ग को उस समय तक ग्रहण किए रहना अवश्य है, जब तक कि सब वस्तुओं की पुनर्स्थापना का समय न आ जाए, जिसके विषय में परमेश्वर ने जगत के आदि से अपने सब पवित्र भविष्यद वक्ताओं के मुख से कहा है। प्रेरितों के काम 3:19-21।
पश्चाताप करने के लिए मनुष्य का जीवित होना आवश्यक है, और जिस सिद्ध अर्थ में पत्रस यहाँ पश्चाताप की ओर संकेत कर रहा है, वो तब घटित होता है जब विश्रांति के दिन आएंगे। विश्राम और ताजगी प्रदान करने का ये समय पिछली वर्षा है, जो तब आरंभ हुई जब प्रकाशित वाक्य 18 का सामर्थी स्वर्गदूत अपनी महिमा से पृथ्वी को आलोकित करने के लिए उतरा। वो सामर्थी स्वर्गदूत 11 अगस्त 1840 के प्रथम स्वर्गदूत भी था, जो उस समय उतरा जब इस्लाम को रोका गया, और वो स्वर्गदूत यीशु मसीह से कम कोई व्यक्तित्व नहीं था। ताजगी और सब वस्तुओं के पुनः स्थापन के समय का आरंभ इस्लाम के छोड़े जाने से होता है, ताकि वो जातियों को क्रोधित करे, और फिर उसे रोका जाता है, जबकि 144,000 पर मुहर लगाई जाती है। 9 अगस्त ताजगी और विश्राम के समयों का चिन्ह है, जो पिछली वर्षा है, और ये सब वस्तुओं के पुनः स्थापन की अवधि को भी चिन्हित करता है, जो बात कलीसिया में पुनः स्थापित की जाती है, जो 1863 के विद्रोह के बाद से योद्धा कलीसिया रही है, परंतु विजयी कलीसिया बन जाएगी। वो 144,000 की मुहरबंदी का समय है।
संघर्षरत कलीसिया गेहूं और जंगली बीजों का मिश्रण है, और विजयी कलीसिया पिंतेकुस्त की पहली उपज के गेहूं की भेंट है। 9 गलबन वो पहली बार था जब बलाम ने गधी को मारा, और आकस्मिक आक्रमण के तुरंत बाद बलाम, संयुक्त राज्य अमेरिका ने आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध आरंभ किया। बलाम की गधी उन 3 हायों का प्रतिनिधित्व करती है जो तीसरी हाय का गठन करती है, और जो 3 स्वर्गदूतों के संदेशों के समानांतर चलती है। इसलिए 3 हाय भविष्यवाणी की दृष्टि से 3 स्वर्गदूतों के 3 चरणों द्वारा शासित है। इसी कारण दूसरी बार जब बलाम गधी को मारता है तो वो दोहराव है, जैसा कि दूसरे चरण में सदा होता है। प्राचीन शाब्दिक और आधुनिक आत्मिक महिमामय देश की 2 दाखबाड़ियों के बीच इस्लाम ने 7 अक्टूबर 2023 को इज़राइल पर प्रहार किया, और तत्काल गाजा पर एक रोक लगा दी गई, और फिर इस्लाम नैशविल पर प्रहार करेगा।
नैशविल प्रहार उन 2 आकस्मिक आक्रमणों में से दूसरा है जो बलाम की गवाही में दाखबाड़ियों के बीच घटित होता है।
नैशविल उस भविष्यवाणीगत संकेत चिन्ह को चिह्नित करता है जब आधी रात की पुकार का संदेश दूसरे स्वर्गदूत के साथ संयुक्त होता है। आधी रात की पुकार का संदेश तब आरंभ होता है जब मसीह के दो चेले, जो दूसरे स्वर्गदूत के संदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं, विजयपूर्ण प्रवेश के आरंभ में गदही को खोलते हैं। वो जुलूस अंततः क्रूस तक ले जाता है, जो निकट आगामी रविवार के कानून के उस भूकंप का प्रतिनिधित्व करता है जहां वेश्या रोम संयुक्त राज्य के इतिहास के लिए उसके भुला दिए जाने के पश्चात बाइबल की भविष्यवाणी के छठे राज्य पर विजय प्राप्त करती है।
जब रविवार के कानून के समय वो वेश्या अपने गीत गाने लगेगी, तब नीनवे की लड़ाई दोहराई जा चुकी होगी और वो कुंजी घुमा दी गई होगी जो संसार में पशु की मूरत की परीक्षा काल के खुलने को चिह्नित करती है। नीनवे की लड़ाई मध्य रात्रि के पुकार के प्रचार का समापन है, जो तब तीसरे स्वर्गदूत की ऊंचे शब्द की पुकार में परिवर्तित हो जाता है। उस अवधि का आरंभ, जो नैशविल पर आकस्मिक आक्रमण द्वारा चिह्नित है, नीनवे की लड़ाई के द्वारा भी पूर्वछायित किया गया होगा, क्योंकि यीशु अल्फा और ओमेगा होने के नाते अंत को सदा आरंभ के द्वारा निरूपित करते हैं। नैशविल पर आक्रमण में भविष्यवाणी की अनिवार्यता के अनुसार रोम की फारस पर ऐसी विजय के तत्व अवश्य सम्मिलित होंगे जो इस्लाम को पृथ्वी को अंधकार से भर देने की अनुमति देती है। डोनाल्ड ट्रंप रोम की मूरत का प्रतीक है, अतः वो नैशविल पर प्रहार से संबद्ध नीनवे की लड़ाई में प्रबल होगा, परंतु इस्लाम की बाढ़ का प्रतिरोध करने की उसकी शक्ति क्षीण हो चुकी होगी।
रोनाल्ड रीगन जिस युद्ध को 1979 में जीतने में सफल हुए, वो एक शीत युद्ध था जो द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में आरंभ हुआ था। ट्रंप का शीत युद्ध पेनियम का युद्ध है और वो संडे लॉ पर तृतीय विश्व युद्ध की ओर ले जाता है, जिसका पूर्व रूप एक्टियम के युद्ध तथा नीनवे के युद्ध द्वारा भी प्रस्तुत किया गया है। ट्रंप का शीत युद्ध, जो पेनियम के युद्ध द्वारा निरूपित है, संविधान में कलीसिया और राज्य के पृथक्करण की दीवार को गिराए जाने की ओर ले जाता है, जैसा कि 1979 में बर्लिन की दीवार को गिराए जाने द्वारा पूर्वरूपित किया गया था।
नैशविल उस बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है जहां बिलाम की गदही बिलाम के पांव को दीवार से कुचल देती है, इस प्रकार दीवार पर होने वाली एक अपंगता की पहचान कराती है। मध्यरात्रि के पुकारने की अवधि उस घटना से आरंभ होती है जो संविधान में पृथक्करण की दीवार से टकराती है, इस प्रकार उस मार्ग चिन्ह के साथ पशु की प्रतिमा कलीसिया और राज्य का संयोजन की स्थापना के आरंभ को चिन्हित करती है, जो पशु की प्रतिमा की स्थापना के अंत में पृथक्करण की दीवार को ढा दिए जाने का प्रतिरूप प्रस्तुत करता है। डोनाल्ड ट्रंप भविष्यवाणीगत रूप से एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से बोलेगा, जो रविवार व्यवस्था के समय होने वाले बोलने का प्रतिरूप है, जैसा कि 1798 के एलियन एंड सेडिशन एक्ट्स में प्रतिरूपित किया गया है। वहां वो डेमोक्रेटिक पार्टी के वैश्वीकरणवादियों और रिपब्लिकन पार्टी के राइनो वैश्वीकरणवादियों में उनके समकक्षों दोनों को पराजित करेगा। नीनवे की लड़ाई में फारस द्वारा प्रतिरूपित शत्रुओं पर उसकी विजय राजनीतिक युद्ध के दोनों पक्षों को उस शक्ति से रहित कर देगी जो इस्लाम की टिड्डियों का प्रतिरोध करने के लिए आवश्यक है, जो देश भर में फैल जाएंगी। ट्रंप का कुचला हुआ पांव मध्यरात्रि की पुकार की उद्घोषणा के आरंभ में स्थित उस दीवार को है जो अंत में आने वाली दीवार तक ले जाती है।
हम अगले लेख में इन तीन हायों पर इस विचार विमर्श को जारी रखेंगे।